अब चलते हैं आयतों के ऊपर जहाँ से पारा शुरू होता है, काल अलम, क्या मैंने न कहा था। ये कॉल है एक उस्ताद का, और एक शागिर्द ने 3 से ज़ायद बार ये कॉल अपने उस्ताद से नहीं सुना। यहाँ फिर नोट कीजिए, अगर उस्ताद अपनी डिग्निटी कायम रहें और अपनी इज़्ज़त कायम रखे ना, तो शागिर्द भी सही हो जाते हैं। शुरू होगा ये आयत नंबर 75 से ऑनवर्ड हम देखेंगे, और पहला हिस्सा जो उसमें शुरू का है 75 से 82, इसका टॉपिक लिखिए आजमाइशों के आईने में चीज़ों की हकीकत। तर्जमा पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर थोड़ी बात होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا। وہ کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، مراد یہ کہ اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا، ٹوٹی پھوٹی کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو ایک تو اس میں آپ کو موسیٰ اور خضر کا استاد اور شاگرد کا روپ دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تھوڑی سی بات ہے جو سمجھنے کی ہے، جو اصل میں اس پورے واقعے سے سیکھنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں 2 طرح کے واقعات ہر وقت پیش آتے ہیں، ایک وہ جو خوشگوار ہوتے ہیں، اچھے، ہم ان کو دیکھ کر سن کر خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ناگوار واقعات ہوتے ہیں۔ جب خوشگوار واقعات آپ کے اور میرے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم کیا سوچ لیتے ہیں؟ مثلاً کسی نیک شخص کے ساتھ کوئی بہت اچھا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں چونکہ یہ مومن ہے، نیک ہی ہوگا، تبھی تو اللہ نے اس کو یہ دیا وہ دیا، تو ہم مومن کی نیکیوں کا صلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اگر کسی مومن کے ساتھ ناگوار واقعہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ہائے اس پہ کیوں آیا، خود بھی کہے گا مجھ پر کیوں آیا، میں نے کیا کیا۔ لوگ بھی کہیں گے ہائے آپ تو اتنے نیک تھے، پھر آپ کا بچہ کیوں بگڑ گیا۔ اس قسم کی باتیں۔ یاد رکھیے اللہ نے اس پورے واقعے میں 3 واقعات کو بنیاد بنا کر یہ بات سمجھا دی، کچھ چیزیں حقیقت میں کچھ اور دکھتی ہیں لیکن اندر کچھ اور ہوتی ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے گھڑی، آپ اور میں، ہم جیسے عام لوگ جب گھڑی دیکھتے ہیں تو اس میں سے کیا دیکھتے ہیں؟ ٹائم دیکھتے ہیں نا، سوئی چھوٹی کدھر اور بڑی کدھر، نمبرز دیکھ لیں گے۔ آپ کسی مکینک کے سامنے وہ گھڑی لے جائیں کہ ذرا چیک کرو یہ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ گھما کے اسکریو سے اس کا اوپر سے وہ کیس اتارے گا، تو وہ اس کے اندر کھول کر دیکھے گا کہ اندر سے کوئی جوڑ تو نہیں ٹوٹا ہوا اور اس کی الائنمنٹ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا، یہ آٹومیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے شوہر یا بیوی کے ساتھ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ کا ایک نام ہے الحکیم، اور اسی نے یہ حکمتوں والی کتاب بھی نازل کر دی तो अल्लाह ताला इन किस्सों में हमें ये दिखाते हैं कि आसान तक रहु शैयन व हुवा खैरुल्लकुम। आज जिस चीज़ पे तुम्हारी चीखें निकल रही हैं, सब्र तो करो, कल इसमें तुम्हारे लिए खैर है। बच्चे को कभी नहीं समझ आई कि माँ ने मुझे इंजेक्शन क्यों लगवाया, लेकिन कुछ महीने साल के बाद समझ आ जाएगी कि ये उसको बीमारी से बचाने का इंजेक्शन था। तो असल में तकदीर पे राजी रहने का सबक है इस हिस्से में। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा वाक्य आता है ना, तो उसको कहिए कि अल्लाह ने आपको आपके गुनाहों के बावजूद अच्छी चीज़ दे दी, अल्लाह तेरा शुक्र है, और नेकियां करिए और अपनी गुनाहों को कम करवाएं। लेकिन अगर कभी कोई नागवार वाक्य आप पे आ जाए, तो आप उसके अंदर छुपी हुई चीज़ को देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि इन तीनों वाक्यात में आप देखिए कि असल खोली। और यहाँ से एक उस्ताद की अच्छी बात खिजर अलैहिस्सलाम के नाते से भी मिलती है, और वो क्या है कि पहले तो वो काम करते रहे और मूसा एतराज़ करते रहे तो कुछ ना बोले, लेकिन एंड पे सवालों का जवाब दिया। यहाँ पता चलता है कि इल्म हासिल करने के बाद सवाल किया जाए ना, फिर उससे फ़ायदा होता है। बीच में जो सवाल किए जाएँ, उस्ताद को बिल्कुल उनका जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ भी करें तो जाने से पहले हिकमत ज़रूर बता देनी चाहिए कि आपसे ये काम क्यों लिया जा रहा है, आपका नाम इस स्कूल से क्यों काटा जा रहा है। और याद रखिए कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत से पहले का वाक़या है। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता एक बहुत बिगड़ी हुई कौम से पढ़ने वाला था, जिसने इतने सवाल करने थे कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया अल्लाह तसलू, सवाल ना करो अपने रसूल से जैसे मूसा से कौम ने सवाल किए। तो ये सारा किस्सा मूसा के लिए एक ट्रेनिंग सेशन था। आपके मेरे लिए भी इसमें सबक है। अगर आपको भी शौक है ना कि अल्लाह आपसे कोई दीन का काम ले, तो इल्म के लिए सफ़र कीजिए। इससे ये भी पता चलता है, जब तक लोगों में जाकर इंट्रैक्शन नहीं होगा, बात समझ नहीं आएगी। पावर पॉइंट्स पे दिखा दिया जाए, क्लास मैनेजमेंट दिखा दिया जाए, क्राउड मैनेजमेंट सिखा दी जाए, टेक्निकल सिखा दिया जाए, लेसन प्लान बना दिए जाएं, ये सारा कुछ हाथ में पड़ा रह जाता है जब आप उस सिचुएशन में डाले जाते हैं जिसमें आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा शागिर्द वो है जो अपने उस्ताद के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारे। इमाम मालिक का देखे, चंद चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। हमारे अकाबिर यानी जो आइमाए किराम और मुहद्दसीन थे, उनका क्या अमल था? इब्ने वहब कहते हैं, मुझे जो कुछ मिला वो इल्म की वजह से नहीं। यहाँ रुकिएगा, इल्म बहुत आसान है। आप नेट से क्लिक कर कर एक लेक्चर डाउनलोड करते हैं और अपनी सहूलत से सुनते रहते हैं, बीच में बोलते भी हैं, फ़ोन भी सुनते हैं, बच्चों के साथ खपते भी हैं, डांटते भी हैं, फिर वो चलता रहता चलता रहता है। चले, कुछ आपके कानों में पड़ गया, कुछ नहीं पड़ा, और जहाँ दिल किया रिवाइंड किया और सुन लिया। ये इल्म है, ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है। तालीम इससे बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। तालीम इल्म और अदब के मजमूए को कहते हैं, अल्लम युअल्लिमु तालीम, और वो होती है उस्ताद की मौजूदगी में। घरों में बैठे लोगों को जब तक खुद को इस काबिल नहीं करना कि मेरा उस्ताद मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उसके सामने अगर पाँव पे पाँव रख के नहीं बैठ सकती, मैं यहाँ भी नहीं बैठूंगी, अगर उसके सामने बीच में खाती पीती नहीं तो मैं अब भी नहीं खाऊंगी, फिर वो भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर की ज़रूरत है घर से इल्म लेना। कई जगह पे इल्म इस तरह आम नहीं है जिस तरह आज हमारे इन मुल्कों में आम है, तो फिर उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कम से कम आपको घर बैठे एक साउंड चीज़ तो मिल रही है। आप घर के पास मस्जिद में एक क्लास में जाते हैं जहाँ आधे घंटे की क्लास और 2 घंटे का बाद में खाना पानी और फिर आंटियों की बातें बातें, उससे बहुत बेहतर है आप घर में साउंड क्लास ले लीजिए, एक ऑप्शन है। लेकिन फिर उस वक्त महसूस करें कि उस्ताद मेरे सामने है। अदब के बग़ैर इल्म अगर मिल जाए तो सख्त दिल शागिर्द पैदा होते हैं, उनके दिल में उस्ताद की इज्जत भी नहीं रहती। उनके लिए उस्ताद नाम है क्लिंक का, उनके लिए उस्ताद नाम है कैसेट का, उनके लिए उस्ताद का नाम है सीडी। बीच में रोक लेते, बीच में बात करते कटक बंद कर दी, चलें जी अब आप शुरू करें, क्या मतलब है? आप अपने उस्ताद को ऐसे बीच में टोक लेते हैं। तो हमारे असलाफ क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे इल्म से नहीं मिला, बल्कि अपने उस्ताद इमाम मालिक के अदब की वजह से मिला। बाअदब बानसीब। इमाम मालिक के शागिर्द थे इमाम शाफई। पता था आपको ये बात? आज जिन नामों पे उम्मत 4 फ़िरकों में बढ़ गई, आपको था ये चारों एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से दुआएं लेते देते थे, आज भी यही होता है। लोग नामों पे उलझ के कितना तासु फैला दें, लेकिन असल बात क्या है कि आप वहाँ से ले क्या रहे हैं। तो इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफ़ई थे, अपने उस्ताद के सामने किताब का वर्क भी आहिस्ता से उलटते ताकि इसकी आवाज़ से उस्ताद को तकलीफ़ ना हो और उस्ताद के सामने पानी पीने की भी ज़रूरत ना होती। इमाम अहमद बिन हम्बल अदब की वजह से अपने उस्ताद का नाम नहीं लेते थे, बल्कि इनका ज़िक्र इनकी कुन्नियत के साथ किया करते थे जी। इनको ऐसे ही नहीं इज्जतें मिली। ये जो चार आइमा किराम आज बड़े मारूफ हैं वर्ल्ड वाइड, ये इनको किसी खूबी की वजह से इज़्ज़त मिली है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैं उसका ग़ुलाम हूँ जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया, अगर वो चाहे तो मुझे बेच दे और अगर चाहे तो आज़ाद करे या ग़ुलाम रखे। तो किसी भी सोसाइटी में काबिल एहतराम कौन लोग होते हैं? बूढ़े लोग, चाहे वो आपके चौकीदार क्यों नहीं हैं, वो माली बाबा क्यों नहीं। इज़्ज़त से बोलिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि इनके सामने पाँव ना पटखा करें। फिर इसी तरह हाफिज़े कुरान, सीने में कुरान है, उनको भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त करवाएं। फिर आलिम दीन की इज़्ज़त है और उस्ताद की इज़्ज़त है। करें क्या? उस्ताद के अदब के कुछ असूल, उस्ताद के सामने बुलंद आवाज़ से ना बोलें, आगे ना चलें उस्ताद के, उनके बैठने की जगह पर ना बैठें। अगर किसी वक्त उस्ताद की तबीयत ठीक ना हो तो उस वक्त उससे कोई बात ना पूछे, उस्ताद को आवाज़ देकर ना बुलाए बल्कि इसके निकलने का इंतज़ार करें। आपने जाबिर और उनैस की रिवायत कई बार सुनी होगी, एक महीने की मुसाफत तय करके गए ऊँट पर, स्पेशल ऊँट ख़रीदा और मदीना से शाम गए और दरवाज़ा नहीं नॉक कर रहे, नहीं सोना रहे हो, आराम ना कर रहे हो, यहीं बैठ के इंतज़ार करता हूँ। जब वो ख़ुद अपनी किसी ज़रूरत से बाहर निकले तो दरवाजे में खड़े, अरे जाबिर क्या हाल है, हाँ अब्दुल्ला क्या हाल, कैसे है, अंदर आओ, मैं तो सुबह से आया बैठा हूँ, अरे नौक क्यों नहीं किया, नहीं आपके आराम का ख्याल था, आपसे इल्म लेने आया हूँ तो मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। ये हालात थे हमारे उम्मत के बड़े लोगों के। फिर इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक रिवायत है सही मुस्लिम 6165, कहते हैं कि नबी सल्लम की आदत मुबारक थी कि जब कोई याद आ जाता और उसके लिए आप दुआ करते तो पहले अपने लिए करते। ये भी एक अच्छा अदब लिख लें। एक रोज़ फरमाने लगे, हम पर अल्लाह की रहमत हो और मूसा पर, काश के वो अपने साथी के साथ और भी ठहरते और सब्र करते तो यानी बहुत सी ताज्जुब खेज बातें मालूम होती। यानी मूसा अगर बीच में ना बोलते तो उस्ताद से और हिकमतें सीखते, जल्दी बोल उठे तो उस्ताद ने फारिग कर दिया। लेकिन उन्होंने तो ये कहकर छुट्टी ले ली कि अब पूछूं तो साथ छूट जाए, मैं अब ज़्यादा तकलीफ़ में आपको डालना नहीं चाहता। बड़ी प्यारी बात है, पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई। असल बात चाहिए कि जितना ज़्यादा आजजी होगी और उस्ताद के हाथ लग जाएंगे आप हीरे बन जाएंगे। पहले दौर की माएँ अपने बच्चों को जब नाराज़ होती थी ना, बच्चे रोते धोते थे तो पता क्या बद्दुआ देती थी, जो बड़ी बहुत बड़ी दुआ थी, कहती थी अल्लाह तुझे किसी मुहद्दिस के हाथ लगवा दे। मुहद्दिस वो है जो हदीसों को जमा करते हैं। वो जिरह तादील इतनी करते थे, कच्चे चट्ठे खोल के ले आते थे, क्या किया, क्यों किया, कब गए, किधर गए, मुराद ये था कि कोई तेरे ऊपर मुसल्लत तो हो जो तेरी खामियां खूबियां तुझे बताए। आज बता के तो देखिए, आप कहते हैं हमें आपसे ज़्यादा पता है। तो याद रखिए, ज़रूरत इस बात की है कि एक इंसान अपना जायज़ा ले। इस बातों को सुनते वक्त आप अपने शागिर्दों को ना जहन में रखें, अगर आप कोई उस्ताद हैं फिर मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त आप अपने आप को एक शागिर्द बनकर पूछिए, मैं कैसी शागिर्द हूँ, किस तरीके से ये बात करूँगी, और इंशाल्लाह हम आगे जाकर भी सीखेंगे। इसी बारे में आज की आयत तदब्बुर भी सीखे हुए इल्म को भुलाने की है, और उसकी सज़ा क्या है कि क़यामत के दिन अंधे उठेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। तो इस किस्से में बहुत सारी बातें थी, जिसमें ख़ास तौर पे आप देखिए कि यही बात कि अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे और वो बुरी भी हो, अच्छी हो सकती है, यानी बहुत लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा इकलौता बेटा क्यों डूब गया। तो यहाँ एक और बात समझ लीजिए, मुस्तद अहमद की रिवायत है 117 थर्ड जिल्द है, अल्लाह की रज़ा और इंसान की रज़ा में क्या है। ख़ास तौर पर देखिए, ये जो वाक़या था ना, ये कभी भी हज़म नहीं हुआ, बच्चे को कत्ल क्यों किया हज़रत खिज़र ने। तो पहला फ़र्क तो आप एक ये समझिए कि मूसा एक साहिब शरीयत नबी थे जिस शरीयत में कत्ल हराम था, अब वो उस्ताद को इतना गलत काम करता देख रहे हैं तो उनके अंदर अमल बिर मारूफ और नहीं निल मुनकर का जो मादा था उसने उनको चुप रहने पे माइल नहीं किया। गलत चीज़ पे हम चुप रहते हैं, अंबिया इकराम चुप नहीं रहते थे। लेकिन आप देखिए कि इस बच्चे का क्या मामला था, इसको ज़रा सा पढ़ लीजिए ये हदीस की रोशनी में और आपको इंशाल्लाह कई चीज़ें उसमें समझ आ जाएंगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, कतादा कहते हैं कि इसकी पैदाइश से इसके माँ बाप बहुत खुश हुए। हर बच्चे की पैदाइश पे माँ बाप खुश होते हैं, और इसकी हलाकत से वो बहुत गमगीन हुए। हालांकि इसकी ज़िंदगी इनके लिए हलाकत थी। बस इंसान को चाहिए कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। अल्लाह इंजाम को जानता है और हम इससे गाफिल हैं। मोमिन जो काम अपने लिए पसंद करता है इसकी अपनी पसंद से वो अच्छा है जो अल्लाह इसके लिए पसंद करता है। तो इसमें आपको मशीयत और रज़ा का फ़र्क भी दिख रहा है। किसी का हिदायत कबूल करना मशीयत भी है और रज़ा भी है। अल्लाह चाहते हैं हर बंदा हिदायत पे आए, लेकिन कोई कुफर और शिर्क अख्तियार करता है तो ये अल्लाह की रज़ा नहीं है, ये सिर्फ मशीयत है। तो आप और मैं अपनी तकदीर की गुथियों को नहीं सुलझा सकते जब तक ये फ़र्क ना देख लें। अल्लाह ताला कुछ काम अपनी खुशी से करता है, कुछ खुशी से नहीं भी करता। ये आपका मेरा टेस्ट होता है कि हम अपने उस मुश्किल वक्त में बिहेव कैसे करते हैं। और उस बच्चे के माँ बाप के लिए एक बड़ा खूबसूरत कमेंट है इधर कुरान में, वकाना अबू हुमा सालेहा। उस बच्चे के माँ बाप बड़े नेक थे जिसका ख़जाना बाद में अल्लाह ने बचवा दिया। याद रखिए, आपके मेरे लिए पेरेंटिंग का एक खूबसूरत असूल है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक हों, आपको नेक बनना पड़ेगा। माँ बाप की नेकी उनके दुनिया से जाने के बाद भी बच्चों के काम आती है। अक्सर हम बच्चों के बारे में देखें तो हम कहते हैं हमने तो इस उम्र में कोई गुनाह नहीं किया था। नहीं, बीइंग अ पेरेंट आपने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं। आपको उसकी सज़ा अपने बच्चों के सदमों की सूरत में मिलती हैं। और फिर आप याद रखिए कि जब दुनिया में इंसान होता है खुद भी नेकियां कर सकता है, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है तो क्या होता है। हदीस में आता है कि जन्नत में औलाद की नेकियों की वजह से माँ बाप के दर्जे बुलंद किए जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को ये हक देंगे, क्या लिखिए ये जुमला, आपका खुद को नेक बनाना आपके बच्चे का हक है आप पे। क्योंकि जब माँ बाप नेक होते हैं ना तो बच्चों को मिलता है। जैसे आप देखिए कि माँ बाप से विरसे में माल मिल जाता है ना, बच्चों ने कभी ख्वाब में भी नहीं इतनी दौलत देखी होती, लेकिन माँ या बाप की वफात की सूरत में मिलती है। इसी तरह माँ बाप की नेकियों का विरसा भी मिलता है। एक होता है विरसा और एक होती है विरासत। इनहेरिटेंस और हेरिटेज दोनों का फ़र्क है। आपको मुझे अपने बाद अपने बच्चों के लिए जो चीज़ छोड़ के जानी है ना, वो विरसा नहीं छोड़ना। दुनिया में दे जाइए, आपकी कब्र ठंडी होगी। ज़रूरत का दे दीजिए, बाकी वो खुद कमा लेंगे। लेकिन जो चीज़ आपने उनके लिए छोड़ के जानी है वो हेरिटेज छोड़ के जानी है। हमारे असलाफ अपने बच्चों के लिए बेहतरीन विरसा छोड़ते थे। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी इसी पारे में यही गम लगा हुआ था कि अल्लाह मेरे बाद मेरे बच्चों की विरासत अच्छी रखना। फिर इसी तरह से आप याद रखिए कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो नफिल जब कभी पढ़ते, एक्स्ट्रा नमाज होती है ना नफिल, तो अपने बेटे को मुखातिब करके कहते मैं नजली का या बुनैया, यानी ये नफिल मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा, ए बच्चे तेरे लिए पढ़ रहा हूँ। क्यों? कि मेरे ये नफिल हो सकता है कल ज़िंदगी में तुझे किसी मुसीबत से रोक ले। जब नवाफिल में सुस्ती आए तो अपने बच्चों को याद कर लें। नबील अवजी एक बहुत ही प्यारे स्कॉलर हैं, इनकी बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, कहते हैं कि जब मुझे नफिल पढ़ने में सुस्ती महसूस हो कि चलो आज नहीं पढ़ता, तो मुझे अपने बेटे की कोई परेशानी याद आ जाती है, तो मैं नफिल पढ़ लेता हूँ कि कहीं मेरे नफिल ना पढ़ने का बवाल मेरे बच्चे पर ना पड़े। इसी तरह एक शख्स जब अपने बेटे में कोई अखलाकी ख़राबी देखते तो फौरन जाकर कुछ सदका दे आते हैं। और कुरान की आयत पढ़ते सूरह तौबा में आप पढ़ चुके हैं, हुस्मिन अमवालिहिम, इनके मालों में से कुछ लो और तुतखिरहुम, इनको पाक कर दो। मुराद यह है कि ये मेरा सदका मेरे बच्चे का अखलाकी तज़किया कर दे। तो आपके मेरे लिए भी यही लाजमी है। इसी तरह एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अपने बेटे का बिगड़ना, यानी अखलाकी तौर पे बिगड़ गया, डीमोरलाइज्ड हो गया, ये मुझे उसके बीमार होने से ज़्यादा तकलीफ़ देता है। जी, एक आलिम के पास एक औरत गई, कहने लगी मेरा बच्चा नहीं खाता। कहने लगे तुम किसी के बच्चे को खिलाना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे बच्चे को खिला देगा। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, कहा तुम किसी के बच्चे को लेके पढ़ाते रहो। आज कितनी माएँ परेशान रहती हैं अपने बच्चों के हाथों, लेकिन अपने सदके खैरात नवाफिल और अखलाक को अच्छा करते जाइए, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। एक शख्स है, उसके पास सदका करने के लिए कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं थे। बेटा उस पर गालिब आ जाता, यदि कभी बच्चा बदतमीज़ी करता, रूठ बात करता, तो तहज्जुद में खड़े होते और सूरत बकरा पढ़नी शुरू कर देते और फिर कहते, अल्लाहुमा इन्ना हाजिही सदकती, ए अल्लाह मेरा यही सदका है, इसको कबूल कर ले और मेरे बेटे की इसलाह कर दे। बिगड़ी हुई औलादों को बचाने का, गलत चीज़ों से बचाने का तरीका, आप अपनी नफली इबादात में ज्यादती करें। और एक बात करके अब आगे चलते हैं, और वो क्या, आपका अल्लाह के रस्तों में भागना, अंसारुल्ला बनकर। बस दफ़ा लोगों को बड़ा खौलता है, बच्चों को रुला के यहाँ आती हैं, और ये कौन सा दीन है कि जवान बच्चे घर बैठे हैं और आप इधर बैठी हैं। आपको इसका अगर ज़रा सा इशारा भी हो जाए ना कि आपकी ये कई साल की भाग दौड़ जो अल्लाह के रास्ते में आप कर रही हैं, इसने आपके बच्चों को किसी गैंग को ज्वाइन करने से बचा लिया, आपके बच्चे को जिना से बचा लिया, आपके बच्चे को बेहयाई से बचा लिया, तो यकीन करें आपके सर सजदों में चले जाएं। क्या पता चला कि अल्लाह ने हमारे इस छोटे मोटे काम को कबूल करके हमारे बच्चों और हमारे घर वालों को हो सकता है कितनी खराबियों से बचा लिया हो। तो बहरहाल सारे पारे का निचोड़ इसी एक सबक में था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो आपके मेरे लिए इन बातों को मानना सुनना आसान कर दे और हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं, हम अपने आप को उस लेवल पे ले आएं कि जिस पे लाना चाहिए। फिर चंद बज़ाहर और चीज़ें इस रुकू में सीखने की। नंबर एक, इल्म हासिल करने के लिए खामोशी शर्त है। बज़ाहर शर्त नज़र आने वाला काम खैर का बाइस भी हो सकता है। अक्ल की ग़ुलामी से निकल कर अल्लाह की ग़ुलामी में आना है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना है इंशाल्लाह। फिर सीखा यह कि किसी भी नेमत के छिन जाने पर शिकवा नहीं करना, अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत करना है, और मान लीजिए कि असल कुव्वत और ताकत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसान करे।